पृष्ठ संख्या 21, कबीर का आत्मसातीकरण। रेमंड विलियम्स ने ठीक ही लिखा है कि हर समय में प्रभुत्वशाली संस्कृति अपने विरोधी और वैकल्पिक विचारों, अर्थों, मूल्यों, अनुभवों और व्यवहारों को आत्मसात करने की कोशिश करती है। आत्मसात करने की क्रिया एक व्यापक सांस्कृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसका एक लक्ष्य है सांस्कृतिक वर्चस्व की स्थापना। आत्मसातीकरण का साहित्य के संदर्भ में अर्थ है किसी पाठ, उसमें मौजूद दुनिया, उसके अभिप्राय, उसकी अर्थवत्ता और सार्थकता को अपनाना, अपना बनाना, ले लेना, चुराना, अपने अधिकार में करना, हथियाना और हड़पना। आत्मसातीकरण के अनेक तरीके हो सकते हैं। उन तरीकों के अभिप्राय और उद्देश्य भी अनेक प्रकार के होते हैं। आत्मसातीकरण की प्रक्रिया मूलगामी होती है और प्रगतिगामी भी। इसीलिए आत्मसातीकरण पर विचार करते समय यह ध्यान में रखना जरूरी है कि वह क्यों और कैसे संचालित हो रहा है। इसके साथ ही आत्मसातीकरण की प्रक्रिया के प्रसंग में आत्मसात करने वाली चेतना और उसके उद्देश्यों को भी समझना आवश्यक है। भारतीय समाज संस्कृति और विचारों के इतिहास में पहले से चली आती हुई प्रभुत्वशाली संस्कृति की वैदिक पौराणिक परंपरा विरोधी विचारों का सामना करने के लिए एक सुनिश्चित पद्धति का प्रयोग करती रही है, जिसकी चार अवस्थाएं हैं: उपेक्षा, विरोध, विकृति और आत्मसातीकरण। इस पद्धति के अनुसार किसी विरोधी विचार या विचारधारा की पहले उपेक्षा की जाती है। अगर उपेक्षा से वह विचार या विचारधारा समाप्त नहीं होती तो फिर उसका विरोध किया जाता है। अगर विरोधी विचारधारा उपेक्षा और विरोध का प्रतिरोध करते हुए जीवित रहती है तो उसको विकृत करके पेश करने का प्रयत्न किया जाता है। अगर कोई विचार या विचारधारा उपेक्षा, विरोध या विकृति की प्रक्रियाओं का सामना करते हुए भी जीवित रहती है तो फिर उसके मूलगामी स्वरूप और परिवर्तनकारी धार को कुंद करके उसे आत्मसात करने की कोशिश होती है। भारतीय ज्ञान की परंपरा में चार्वाक, जैन, बौद्ध आदि दर्शन और कबीर जैसे संत कवि वैदिक और पौराणिक परंपरा द्वारा उपेक्षा, विरोध, विकृति और आत्मसातीकरण की प्रक्रिया के शिकार हुए हैं। पृष्ठ संख्या 22। भक्ति आंदोलन के साथ जो मूलगामी दार्शनिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक प्रक्रिया तथा चेतना निर्मित हुई और उसकी जो अभिव्यक्ति सामने आई, उसके उत्तर भारत में प्रवर्तक कबीर थे। इसीलिए वे वैदिक पौराणिक परंपरा के वर्चस्व के लिए एक चुनौती बन गए। वैसे तो कबीर को आत्मसात करने के प्रयास एक ओर वेस्टकॉट, फर्क कुहर, जॉर्ज ग्रियर्सन, विल्सन आदि की ओर से हुए तो दूसरी ओर अब्दुल हक देहलवी, मोहसिन काजी और सरदार जाफरी की ओर से भी। यूरोपीय विद्वानों ने कबीर में ईसाइत की खोज की तो दूसरे समूह के विद्वानों ने सूफी मत की। लेकिन कबीर मुख्य चुनौती बने थे। वैदिक पौराणिक परंपरा, उसके सांस्कृतिक वर्चस्व और उस पर आधारित हिंदू समाज की संरचना के लिए। इसीलिए कबीर को अपनी संस्कृति और परंपरा में समाहित करने की सबसे अधिक कोशिशें वैदिक और पौराणिक परंपरा के समर्थकों की ओर से हुई हैं। कबीर के क्रांतिकारी व्यक्तित्व और विचारों को वैदिक पौराणिक परंपरा में आत्मसात करके उनको हिंदू समाज की वर्ण व्यवस्था के अनुकूल बनाने का एक प्रयास भक्तमाल की टीकाओं में दिखाई देता है। नाभादास ने भक्तमाल की रचना 1585 से 1609 के बीच की थी। भक्तमाल उत्तर भारत के भक्ति काव्य का विश्वकोश है। उसमें हिंदी के प्रमुख भक्त कवियों के व्यक्तित्व और विचारधारा का सटीक बखान है। उसकी लोकप्रियता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि हिंदी में 17वीं सदी में 19वीं सदी के बीच अनेक भक्तमालों की रचना हुई और नाभादास के भक्तमाल की टीकाएं भी लिखी गईं। अब तक भक्तमाल की 20 से अधिक टीकाएं मिलती हैं। नाभादास के भक्तमाल की लोकप्रियता का एक पक्ष यह भी है कि उसका अनुकरण करते हुए उत्तर भारत की अनेक भाषाओं में भक्तमालों की रचना हुई है। नाभादास ने भक्तमाल में कबीर के बारे में जो छप्पे लिखा है, उसमें कबीर के क्रांतिकारी व्यक्तित्व और विचारधारा की सभी बुनियादी बातें मौजूद हैं। वह छप्पे इस प्रकार है: भक्ति विमुख जो धर्म सुबस अधर्म करि गाये, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखाए, हिंदू तुरक प्रमाण रमेनी सबदी साखी, पक्षपात नहीं वचन सबन के हित की भाखी, आरुण दशा भय जगत पर मुख देखी नाहिन भनी, कबीर का निराखी नहीं वर्णाश्रम षट दर्शनी। कबीर के आधुनिक सहृदय आलोचकों ने उनके क्रांतिकारी व्यक्तित्व और विचारों के बारे में जो कुछ विस्तार से लिखा है वह सब मूल रूप से नाभादास के छंद में मौजूद है। पृष्ठ संख्या 23। भक्तमाल की पहली टीका प्रियादास ने 1712 में लिखी थी। इस टीका में कबीर द्वारा रामानंद के शिष्य बनने की बात है और कबीर के अनेक चमत्कारपूर्ण कार्यों का भी वर्णन है। एक तरह से कबीर को मिथक बनाने की पहली कोशिश प्रियादास की टीका में ही हुई है। इस टीका में सिकंदर लोदी द्वारा कबीर पर अत्याचार करने और बाद में परास्त होकर उनका भक्त बनने की बात भी है। इसके साथ ही मृत्यु के बाद कबीर की लाश के फूलों में बदलने की बात भी इसी टीका में है। नाभादास के छंद में कबीर के व्यक्तित्व और विचारों की जिन विशेषताओं का उल्लेख है उनमें से किसी की व्याख्या प्रियादास की टीका में नहीं है। इस टीका में जो कुछ कहा गया है उससे टीकाकार की विचारधारा तो सामने आती है पर कबीर की नहीं। जो लोग भारत की टीका परंपरा के विचारधारात्मक पक्ष से परिचित हैं उन्हें प्रियादास की टीका की विचारधारा को समझने में बहुत कठिनाई नहीं होगी। प्रियादास की टीका में आत्मसातीकरण की प्रवृत्ति कबीर से भी अधिक रैदास के प्रसंग में दिखाई देती है। प्रियादास के अनुसार रैदास पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। वह इस जन्म में चमार जाति के होने के बावजूद अंतर मन से ब्राह्मण ही थे क्योंकि उनकी चमड़ी के भीतर जनेऊ मौजूद था। टीका की यह प्रवृत्ति केवल हिंदी तक सीमित नहीं है। आलवार, भक्त, कवि, शठकोपण जिन्हें नामलवार भी कहा जाता है वह भी शूद्र जाति के थे। उनके बारे में भी बाद में टीकाकारों ने यह लिखा कि शूद्र के घर में पैदा होने के बावजूद उन्होंने ना तो माँ का दूध पिया, ना विवाह किया और ना अपना पेशा अपनाया। इस तरह उन्हें जाति की पहचान के लिए जरूरी सभी बातों से मुक्त घोषित कर दिया गया। इससे यह भी जाहिर होता है कि जो संत और भक्त कवि जाति व्यवस्था को अस्वीकार करते थे उन्हें भी जाति व्यवस्था के भीतर समेटने की कोशिश टीका परंपरा में हुई है। भक्तमाल के कवि नाभादास के बारे में कहा जाता है कि वह डोम जाति के थे लेकिन 19वीं सदी के अंत में भक्तमाल की भक्ति सुधा स्वाद तिलक टीका लिखने वाले रूप कला जी ने नाभादास की जाति के बारे में तरह तरह की कल्पनाएं करते हुए उन्हें डोम मानने से इनकार किया। भक्ति आंदोलन की एक बड़ी सांस्कृतिक उपलब्धि है भारत के विभिन्न क्षेत्रों की जनता की मातृभाषाओं का रचनात्मक उत्थान और उनमें काव्य रचना का अपूर्व विकास। दक्षिण के आलवार भक्तों से लेकर कश्मीर के ललदद और असम के शंकर देव से हिंदी के कबीर आदि तक देश भर के पुरुष और स्त्री भक्त कवि अपनी मातृभाषा के कवि थे। यह एक तरह से संस्कृत के वर्चस्व से लोक भाषाओं की स्वतंत्रता का आंदोलन भी था जिसके कारण लोक प्रतिभा की मुक्ति संभव हुई। इस मुक्ति के कारण ही भारतीय साहित्य के लंबे इतिहास में कवि के रूप में प्रायः अनुपस्थित अदृश्य और मौन दलितों तथा स्त्रियों की रचनात्मक प्रतिभा का विस्फोट पृष्ठ संख्या 24 भक्ति आंदोलन के काव्य में दिखाई देता है और साथ ही उनकी सहज तथा शक्तिशाली आत्म अभिव्यक्ति सामने आती है। अगर भक्ति आंदोलन के साथ मातृभाषाओं में कविता रचने की प्रवृत्ति का विकास नहीं होता तो दलित और स्त्रियां कवि के रूप में भारतीय समाज के सामने नहीं आ पाते। उस समय भारतीय समाज में दो भाषाओं का वर्चस्व था, ज्ञान और रचना की भाषा संस्कृत थी और सत्ता की भाषा फारसी। दलितों और स्त्रियों को संस्कृत में बोलने और लिखने की स्वतंत्रता ना थी और फारसी तक उनकी पहुंच ही नहीं थी। संस्कृत के नाटकों में स्त्रियां और शूद्रों दासों को संवाद बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी, उन्हें प्राकृत में संवाद बोलना पड़ता था। ऐसी स्थिति में संस्कृत और फारसी में स्त्रियों और शूद्रों की काव्य रचना कैसे संभव होती? एक ओर स्त्री और पुरुष भक्त कवियों ने अपनी अपनी मातृभाषाओं में कविता लिखकर संस्कृत के आतंक से मुक्ति पाई तो दूसरी ओर सूफी कवियों ने लोक भाषाओं में कविता लिखकर आम जनता को फारसी के आतंक से मुक्त किया। लोक भाषाओं की संस्कृत से स्वतंत्रता केवल एक भाषा से मातृभाषाओं की स्वतंत्रता ना थी। संस्कृत केवल एक भाषा नहीं थी, वह अभिजात संस्कृति, उसकी संवेदना, उसकी विश्व दृष्टि और उससे निर्मित सामाजिक संरचना के पोषण तथा संरक्षण का माध्यम भी थी। यही नहीं, वह वैदिक, पौराणिक परंपरा और वर्णाश्रम व्यवस्था के वर्चस्व का साधन भी थी। संस्कृत से लोक भाषाओं की स्वतंत्रता लोकमन और लोकमत की स्वतंत्रता बन गई। संस्कृत से लोक भाषाओं की स्वतंत्रता सरलता से और सहज रूप में प्राप्त नहीं हुई। उसके लिए भक्त कवियों को कठिन संघर्ष करना पड़ा। संस्कृत के वर्चस्व से अपनी मातृभाषाओं की मुक्ति का मार्ग जिन कवियों ने बनाया, उनमें मराठी के महान संत और भक्त ज्ञानेश्वर का नाम सबसे पहले आता है। वह एक प्रकार से इस मुक्ति आंदोलन के नेता हैं। उन्होंने मराठी में गीता की टीका लिखी, जिसे ज्ञानेश्वरी कहा जाता है। ज्ञानेश्वरी के तीसरे अध्याय में ज्ञानेश्वर के अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि आप मुझे गूढ़ सिद्धांत बता रहे हैं, पर मुझे धोखा दे रहे हैं। आपके वचन मेरी समझ में नहीं आते, इसलिए गूढ़ वचन ना बोलिए और जो विवेक है उसे मराठी भाषा में कहिए। मूल मराठी में ज्ञानेश्वर के अर्जुन का कथन इस प्रकार है। ना तरि झाँकवीत आहासि माते किं तत्त्वचिकथिले ध्वनिते हे अवगामिताम निरुते जावड़े न हम लयने आई कै देवा हा भावर्थु आताम ना बोलावा मज विवेकु तो संघावा मन हाटा जी। ज्ञानेश्वर का जन्म 1275 ईस्वी में हुआ था। 13वीं शताब्दी के इस संत कवि ने पृष्ठ संख्या 25 अर्जुन के माध्यम से ईश्वर से यह मांग की है कि वह मनुष्यों की भाषा मराठी बोले, ना कि देववाणी संस्कृत। ज्ञानेश्वर की यह मांग भारतीय भाषाओं के इतिहास की सबसे क्रांतिकारी मांग है। उन्होंने ज्ञानेश्वरी के आगे के अध्यायों 6, 7, 9 और 12 में मराठी की श्रेष्ठता, महत्व और सौंदर्य का प्रतिपादन भी किया है। उन्होंने संस्कृत से मराठी की तुलना करते हुए लिखा है कि दाऊम विलहाल देशी नवी जैसा साहित्याते बोजावी आम ताई चूकी ठेवी गोड शे पड़े। यह कथा प्रेम से देशी शब्दों में कहूँगा जो साहित्य को व्यवस्थित मार्ग दिखाएगी। यह अमृत को भी अपनी मधुरता से पछाड़ देगी। ज्ञानेश्वर का यह कथन पूरी तरह सच साबित हुआ। ज्ञानेश्वरी की लोकप्रियता के आगे देववाणी में लिखे अधिकांश ग्रंथ फीके पड़ गए। ज्ञानेश्वर यह सब जानबूझकर एक क्रांतिकारी अभियान के तहत कह रहे थे। उन्होंने 10वें अध्याय में एक जगह लिखा है, माझा महाठासी बोलू कौतिके परि अम ताते ही पय जैसी जी के ऐसी अक्षरेंची रसिके मेलवान। मेरी मराठी भाषा प्रेम से बोलो, यह अमृत से भी शर्त लगाने पर जीत जाएगी। ऐसे अक्षर मैं रसिकों के लिए एकत्र करूंगा। यहाँ मैं भारतीय या हिंदू ज्ञान परंपरा में मौजूद एक पाखंड की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता है। ज्ञानेश्वरी के दो अनुवाद मेरे सामने हैं, एक हिंदी अनुवाद जो साहित्य अकादमी से 1996 ईस्वी में छपा है, अनुवादक हैं मोरेश्वर गणेश तपस्वी। दूसरा अनुवाद अंग्रेजी में है जो भारतीय विद्या भवन से छपा है, जिसका तीसरा संस्करण 2001 ईस्वी का है, अनुवादक हैं एम आर यार्डी। दोनों अनुवाद की एक विशेषता यह है कि उनमें ज्ञानेश्वरी के तीसरे अध्याय की 17वीं ओबी का जो अनुवाद है उसमें मराठी शब्द गायब कर दिया गया है। ज्ञानेश्वरी के अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि आप मराठी में विवेक की बातें कहिए, जबकि हिंदी अनुवाद में लिखा है कि विवेक क्या है कहिए सुगम भाषा में, और अंग्रेजी में लिखा है कि अपने विचार सरल भाषा में कहिए। इन दोनों अनुवादों में मूल से जो अंतर है वह संस्कृत के प्रति अंध आस्था की ही देन है। ऐसा लगता है कि उस अंध आस्था ने सच कहने के साहस को मार दिया है। यह सब करने के बावजूद दोनों अनुवादकों, पृष्ठ संख्या 26, ने अपने अनुवादों की भूमिकाओं में ज्ञानेश्वर का बहुत गुणगान किया है। व्यक्ति की पूजा और विचार की हत्या की यह प्रवृत्ति ज्ञान परंपरा की एक जानी पहचानी विशेषता है। संस्कृत के वर्चस्व से लोक भाषाओं के संघर्ष की यह प्रक्रिया ज्ञानेश्वर के साथ समाप्त नहीं होती। उनके 3 सदी बाद के महान मराठी संत कवि एकनाथ ने अपनी रचना चतुःश्लोकी भागवत की प्रस्तावना के अनेक छंदों में संस्कृत से मराठी की तुलना करते हुए मराठी के महत्व का प्रतिपादन किया है। संस्कृत ग्रंथ करते ते महाकवि माँ प्राकृतिम काय उड़ावी नवी चुनी महाणवी कैसे निकेवी सुवर्ण सुमिने। ब्रैकेट में संस्कृत ग्रंथकर्ता महान कवि हैं तो प्राकृत कवियों में क्या न्यूनता है? सुवर्ण सुमनों में नए पुराने का भेद कैसे किया जाए? जे पाविजे संस्कृत अर्थे तेंचि लाभे प्राकृते तरीना मनावया एथे विषमचि ते काई। जो संस्कृत में अर्थ मिलता है वही लोक भाषा में मिलता है, तो फिर इसमें भिन्नता क्या माननी है? संस्कृतवाणी देवे केली परि प्राकृत काय चोरा पासे निझली असो तुया अभिमान भूली वृथा बोलली काय काज। संस्कृत वाणी ईश्वर ने बनाई, वह देववाणी है तो प्राकृत क्या चोरों के पास से आई है? यह तब मिथ्याभिमान है, वृथा बोलने से क्या लाभ है? महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर और एकनाथ ने सचेत रूप से संस्कृत की संस्कृति के विरुद्ध जो अभियान चलाया उसे तुकाराम ने अपनी कविता के माध्यम से सहज रूप से आगे बढ़ाया। तुकाराम जाति के कुणबी थे, इसीलिए वे संस्कृत के वर्चस्व से उस तरह नहीं लड़ सकते थे जैसे ब्राह्मण ज्ञानेश्वर और एकनाथ लड़ सकते थे। इन तीनों की कविता के मानवतावाद और लोकप्रियता से ब्राह्मण चिढ़े। इन सभी महाकवियों को अपनी क्रांतिकारी चेतना और समतावादी दृष्टि का मूल्य चुकाना पड़ा। ब्राह्मणों ने उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर किया। ज्ञानेश्वर को 21 वर्ष की आयु में ही जीवित समाधि लेनी पड़ी। एकनाथ ने जल समाधि ली और तुकाराम भी नदी में डूबकर ही मरे। इन तीनों ही स्थितियों को देखते हुए यह अनुमान किया जा सकता है कि उनका संघर्ष कितना कठिन था और बलिदान कितना महत्वपूर्ण। हिंदी क्षेत्र में इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम कबीर ने किया। वह संस्कृत के सामाजिक आधार, सांस्कृतिक प्रयोजन और विचारधारात्मक प्रभाव से परिचित थे। उन्होंने संस्कृत की संस्कृति से जनभाषा की संस्कृति का अंतर स्पष्ट करते हुए कहा था कि पृष्ठ संख्या 27, संस्कृत है कूप जल भाषा बहता नीर। कबीर के समय में संभवतः ऐसे लोगों की भरमार थी जो संस्कृत पढ़ लेने के कारण स्वयं को ज्ञानी समझते थे, लेकिन उनमें मानवोचित गुणों का अभाव था। इसीलिए कबीर ने संस्कृत पढ़कर ज्ञानी होने का दंभ पालने वालों पर व्यंग करते हुए कहा था, संस्कृत भाषा पढ़ लीन्हा ज्ञानी लोक कहोरी आशा तृष्णा में बही गयो सजनी काम के ताप सहोरी मान मनी की मटुकी सिर पर नाहक बोझ मरोरी मटुकी पटक मिलो पीतम से साहेब कबीर कहोरी। ऐसे कबीर को वैदिक पौराणिक परंपरा के अनुकूल बनाने और उन्हें प्रभुत्वशाली संस्कृति की धारा में आत्मसात करने के लिए उनके व्यक्तित्व, विचार और कविताओं का बड़े पैमाने पर संस्कृतिकरण किया गया है। यह काम कबीर पंथ के लोगों ने भी किया है। कबीर की रचनाओं का संस्कृत में अनुवाद हुआ है और संस्कृत में उनकी टीकाएं तथा व्याख्याएं भी लिखी गई हैं। कबीर के संस्कृतिकरण के फलस्वरूप एक ओर दश मात्रा, कबीर शतकम और ब्रह्म निरूपण आदि पुस्तकें लिखी गईं हैं, तो दूसरी ओर बीजक की स्वामी हनुमान दास ने स्वानुभूति नामक व्याख्या संस्कृत में लिखी है जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कबीर के व्यक्तित्व और विचारों के संस्कृतिकरण का अब तक सबसे बड़ा सुनियोजित प्रयास कबीरवाणी नाम की पुस्तक में दिखाई देता है। कबीरवाणी का दो खंडों में प्रकाशन लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली से हुआ है। यह किसी बोधानंद या बोधन द्वारा कबीर की कविताओं की संस्कृत में टीका है और साथ में हिंदी भावार्थ भी दिया गया है। ध्यान देने की बात यह है कि हिंदी भावार्थ कबीर की कविताओं का नहीं, संस्कृत टीका का है। कबीरवाणी के संपादक और हिंदी भावार्थ लिखने वाले हरिहर द्विवेदी के अनुसार बोधानंद की संस्कृत टीका या व्याख्या की कोई मूल प्रति उपलब्ध नहीं है, केवल उसकी विष्णु नामक किसी चित्तपावन ब्राह्मण की 1877 ईस्वी की एक प्रतिलिपि प्राप्त हुई है। इस प्रसंग में एक प्रश्न यह है कि कबीर की कविताओं की संस्कृत टीका लिखने वाले बोधानंद कौन थे? हरिहर द्विवेदी ने लिखा है कि बोधानंद के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, फिर भी उन्होंने अनुमान किया है कि बोधानंद कबीर के शिष्य थे और उनके समकालीन भी। लेकिन भक्तमाल में बोधानंद नाम के किसी कबीर के शिष्य का कोई उल्लेख नहीं मिलता। बहुत संभव है कि बोधानंद की संस्कृत टीका 19वीं सदी में लिखी गई हो, क्योंकि 19वीं सदी में ही कबीर के आत्मसातीकरण की विभिन्न प्रक्रियाएं तेज होती हुई दिखाई देती हैं और साथ ही कबीर को हिंदू धर्म तथा दर्शन के अनुकूल बनाने की कोशिशें भी। पृष्ठ संख्या 28। कबीर की कविताओं की बोधानंद ने संस्कृत में जो व्याख्या लिखी है उसमें कबीर को सृष्टि के प्रवर्तक, श्रुतियों के प्रतिपादक, सर्वव्यापी परमात्मा से अभिन्न माना गया है। कबीर की कविताओं में वेदों, उपनिषदों, पुराणों और स्मृतियों के विचारों की खोज करते हुए यह सिद्ध किया गया है कि कबीर ने अपनी कविताओं में इन सबको प्रमाण माना है। बोधानंद ने कबीर के नाम की जो व्याख्या की है उससे उनका अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। कबीरवाणी के पहले खंड में रामायणियों की व्याख्या करते हुए बोधानंद ने कबीर नाम का अर्थ किया है वेद, वेद और धीर, वशिष्ठ आदि महर्षि, श्री कृष्ण शास्त्र आदि। और दूसरे खंड में साखियों की व्याख्या के प्रसंग में कबीर का अर्थ है ब्रह्म, श्रुति, शास्त्रज्ञ और कर्मकांड इत्यादि। कबीर पोथीनिष्ठ ज्ञान के विरुद्ध थे। वे कागद लेखी के बदले आखिन देखी के महत्व को स्वीकार करते थे। वह शास्त्र ज्ञान पर निर्भरता के बदले अनुभव से प्राप्त ज्ञान की बात करते थे। बोधानंद ने साखी का अर्थ किसी दूसरे की कही बात, श्रुति और स्मृति के वाक्यों को प्रमाण मानना घोषित किया है। कबीर ने एक दोहे में साखी का महत्व स्पष्ट करते हुए लिखा है, साखी लाए जतन करी इत उत अक्षर काट, कह कबीर कब लग जिए जूठी पत्तल चाट। पाठक स्वयं ही यह तय करें कि वह साखी के बारे में कबीर के इस कथन को स्वीकार करेंगे या बोधानंद द्वारा लिखी गई साखी की व्याख्या को। बोधानंद की व्याख्या में कबीर की कविता के अर्थ के चमत्कारों की भरमार है। उदाहरण के लिए एक चमत्कार की चर्चा पर्याप्त होगी। कबीर ने अपनी भाषा के बारे में एक साखी लिखी है जो इस प्रकार है, बोली हमारी पूर्व की हमें लखे नहीं कोय, हमें लखे सो जना जो धुर पूर्विया होय। एक तो इस साखी में लोक प्रचलित साखी का पाठ बदल दिया गया है। लोक में प्रचलित साखी इस रूप में है, बोली हमारी पूर्वी हमें लखे नहीं कोय, हमको तो सोई लखे जो पूरब का होय। कबीर अपनी मातृभाषा भोजपुरी के कवि हैं। उनकी लोक प्रचलित साखी भोजपुरी में है, लेकिन जो साखी बोधानंद की व्याख्या वाली कबीरवाणी में है वह खड़ी बोली की छाप लिए हुए है। महत्व की बात यह है कि बोधानंद ने इस साखी की व्याख्या करते हुए पूर्व का अर्थ किया है तत्वमसि। कबीर के अनेक दोहों में पृष्ठ संख्या 29 पूर्व या पूरब का अर्थ दिशा सूचक है। आप कबीर के दो तीन दोहे देखिए जो इस प्रकार हैं, आगी जो लगी समुद मह, जरे जो कांदो झारी, पूरब पश्चिम के पंडिता मुए बिचारी बिचारी। एक और साखी देखिए, पूरब उगे पश्चिम विश्व में, भखे पवन को फूल, ताको काल गरासे मानुष काहे भूल। बोधानंद ने कबीर को आत्मसात करने के लिए उनकी कविताओं का जो संस्कृतिकरण किया है, उसमें कबीर के व्यक्तित्व और उनकी कविता की ऐतिहासिकता का विनाश हुआ है। उनकी कविताओं में मौजूद सूफी प्रभाव और इस्लाम की कट्टरता की आलोचना का भी बहिष्कार किया गया है। कबीर ने बार बार वेद और कुरान को एक साथ रखकर दोनों की जो आलोचना की है, वह भी बोधानंद की व्याख्या से गायब है। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि बोधानंद की व्याख्या में कबीर एक सहृदय कवि के रूप में नहीं, नीरस दार्शनिक के रूप में सामने आते हैं। इस तरह उनका अपूर्व काव्यत्व समाप्त हो गया है। इस बात के प्रमाण के लिए कबीर का एक दोहा और उसकी बोधानंद की व्याख्या को देख लेना पर्याप्त होगा। कबीर का एक प्रसिद्ध दोहा है, बिरह बाण जेहि लागिया औषधि लगे न ताहि, सुसुक सुसुक मरि मरि जीवे उठे कराही कराही। अब इस दोहे की बोधानंद द्वारा लिखी गई व्याख्या का हिंदी रूप देखिए, इन्वर्टेड कामा। तीव्र वैराग्य से संसार का दोष जानकर उसका परित्याग करने वाला व्यक्ति बिरह बाण से विद्ध है, और अष्टांग योग आदि कोई भी औषधि उसे स्वस्थ नहीं कर सकती। उसके लिए तो केवल एक ही औषधि है, केवल यह विचार कि मैं आत्मा ही हूँ। उसकी प्राप्ति के अभाव में ऐसा व्यक्ति पश्चाताप करे, यह स्वाभाविक ही है। यूनाइटेड कामा बंद। नाभादास ने कहा था कि कबीर ने वर्णाश्रम और षट दर्शनी की सीमाओं को नहीं माना, लेकिन बोधानंद ने कबीर को वर्णाश्रम और षट दर्शनी का समर्थक सिद्ध किया है। कबीर के विचार चार्वाक और बौद्ध दर्शन के विचारों से मिलते जुलते हैं, लेकिन बोधानंद ने कबीर को आस्तिक दर्शनों के अनुकूल बनाया है। कबीर ने लिखा था कि आ भूले षट दर्शन भाई, पाखंड बेस रहा लपटाई। इस दोहे की व्याख्या करते हुए बोधानंद ने केवल जैन दर्शन को भ्रांत कहा है। कबीर को ब्रह्मवादी बनाने के लिए रूपकवाद का सहारा लिया गया है। रूपकवाद प्रायः ऐतिहासिकता और यथार्थवाद का विरोधी होता है, वह रहस्यवाद की ओर ले जाता है। कबीर की ऐतिहासिक पहचान और सामाजिक भूमिका को धूमिल करते हुए उनके मिथकीकरण का प्रयास बोधानंद की टीका में दिखाई देता है।